अगला टॉपिक है मुआहिदाना रवाबित, और यहाँ से काम करने का तरीका सीखें। ये नबी की स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं हम, कैसे वो इस चीज़ को लेकर चलते थे। और यहाँ एक छोटी सी भी बात कर दूँ कि मस्जिद का बन जाना किसी इलाके में इस्लाम आने की वजह बनती है ना। किसी इलाके में इस्लाम के नाम पर कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट कायम हो जाए, ये भी उस जगह पे अल्लाह की तरफ से एक खैर होती है, और अल्लाह ने वहाँ से कोई अच्छा काम लेना होता है, ये इसकी दलील बन जाती है। तो इस चीज़ की भी इंसान अगर अहमियत को समझे तो मेरा ख्याल है सर शुक्र से सजदों में चला जाए कि अल्लाह तू हमें किसी भी जगह की हिदायत का ज़रिया बना दे। तो नबी सल्लम का अगला मामला क्या था? इज्तमाई, ये क्या होते हैं? इसको पढ़ें तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि हम आगे क्या पढ़ेंगे? मुआहिदाना क्या हुआ? मुआहिदा, ठीक है, ये तो बना अहद से, वादे, अहद, एग्रीमेंट्स, ठीक है। आगे पढ़िए, रवाबित क्या है? राबते से, राबता क्या है? इस बिरु असा बिरु व राबितु, ठीक है। क्या पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आने के बाद ना सिर्फ ये कि मस्जिद नबी बनाई बल्कि कुछ मुआहदे किए। देखिए मस्जिद, या कह लीजिए मस्जिद ही की बात हो रही है, ये बिल्डिंग का नाम है, प्लेस ऑफ वर्शिप, लेकिन यहाँ राबते हैं इंसानों से। हर शहर में कुछ ना कुछ लोग पहले से कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं। जब नबी सल्लम मदीना में आए तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, जिसमें यहूद भी थे और औसर खजरज भी थे और इर्द के बदवी भी थे। अल्लाह के नबी के काम करने का रंग देखिए कि आपने कट छट के या अलग होकर 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर, और अपने ही गुमान में ये कि सारा हक हमारे पास है, अब सबको हमारे पास आना चाहिए, ये नहीं किया। आपने उस शहर यानी मदीना मुनव्वरा में रहने वाले लोगों से राबते किए। क्या पता चला? मुसलमान को दूसरों के साथ राबता करना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अपनी जगह पे अलग बैठे और किसी से मिलने को आप पसंद ना करें, ये नहीं। और ये राबते ना सिर्फ ये कि दीन के नाम पर थे, सियासी माहदे भी थे, समाजी भी थे। आपने मीसा के मदीना का नाम शुरू से बचपन में पढ़ा होगा किताबों में, तो ये वही सब कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। अवाम में दावतों तालीम का जो वसी काम बराह रास्त तरीके पर हुआ, इसके साथ जो दूसरे बड़े बड़े इकदाम मौसर हद तक मददगार साबित हुए, इनमें से एक मदीना के सियासी असरात की तौसी यानी वसत का काम था, जो बेशतर माहदात और हलीफाना ताल्लुकात के ज़रिए अमल में आया। हलीफाना क्या होता है? दोस्ती वाले, हल्फ उठाना, यानी शेक हैंड करके जो माहदे करते थे। माहदाना राबते के ज़रिए नबी सल्लम का हुकूमत के दायरे असर को वसी करना और इस मामले में गैर मामूली हद तक तवज्जो देना, ये जाहिर करता है कि आप जंगो जदल से इंतहाई मुमकिन हद तक बच के निकलना चाहते थे और अमन व आश्ती की फ़िज़ा चारों तरफ कायम करना चाहते थे, ताकि ऐसी पुरसकून फिज़ा में दावत हक का ठंडा काम बखूबी हो सके और जंगी जज्बात बीच में हायल ना हो। जंगी कार्रवाइयाँ जहाँ कहीं बकाए रियासत, बकाए अमन या बकाए इस्लाम के लिए नागुज़ीर ज़रूरत बन गईं, वहाँ तो आपने किसी दर्जे की हिचकिचाहट से काम नहीं लिया। यानी आपने जितनी भी जंगें की वो मजबूरी में की, जब जंग के बगैर गुजारा ना हुआ, ठीक है। लेकिन अगर जंग से बच के निकला जा सकता हो, रियासत का सियासी तहफ्फुज़ व इस्तेहकाम और दावत के लिए खुला मैदान अमन व आश्ती से हासिल करना मुमकिन हो, तो फिर आपने लाजिमन सुलह व आश्ती का रास्ता इख्तियार किया। खुद रियासत का वजूद तलवार के ज़ोर से नहीं, इसको हाईलाइट कीजिएगा, बल्कि दस्तूरी माहदे के बल पर कायम हुआ। ये दस्तूरी माहदा क्या है? एग्रीमेंट। कोई बंदा आपके साथ मामला करता है, अब आप कहते हैं क्या करें? माहदे को देखिए, क्या एग्रीमेंट में लिखा था? जिस वक्त ये जॉब दी थी, जिम्मेदारी दी थी, तो क्या कंडीशन सेट हुई थी? जो बंदा इस पे अमल नहीं करेगा, लोग उसको ऐन वक्त पे छोड़ देंगे। जब उनको कोई और रास्ता मिलेगा वो उधर चल पड़ेंगे। उनको पता है आप हैं ही बड़े नरम, आप फिर कहेंगे अच्छा जी चलो अल्लाह आपके लिए भी बेहतर करे तो हमारे लिए भी बेहतर करे। अल्लाह के नबी ऐसे नहीं करते थे। माहदा टूटने पर तो सुलह हुदैबिया टूटी और फतेह मक्का की नौबत पड़ गई। तो लिहाजा दस्तूरी माहदों को बहुत अहमियत दी गई इस्लाम में। फिर इसके तहफ्फुज़ के लिए और इसके असरात की वसअत के लिए आपने हलीफाना रवाबित को बड़े पैमाने पर ज़रिया बनाया कि जंगी कार्रवाइयाँ इनके मुकाबले में बिल्कुल हल्का तनासब रखती हैं, जैसे दस्तूर पाकिस्तान। लेकिन एक आपके इस इदारे का भी दस्तूर होगा, एक आपके घर का भी दस्तूर होता है, रूल्स ऑफ दिस होम। इस घर में रहने के रूल्स क्या है, इस इदारे में आने के असूल क्या है, तो ये ज़्यादा अहम है जंगी कार्रवाइयों की निस्बत। माहदात इस्तवार करना और हलीफाना ताल्लुक़ कायम करना कोई आसान काम नहीं होता, खसूसन जबकि मजहबी इख्तलाफात मौजूद हों। एग्री करते हैं इस बात से? सियासी तासुबात पैदा हो जाएं, फिर तो और ही मुश्किल है। दरमियान में खुली खुली मुखालिफ ताकतें मुदाखलत कर रही हों और मामला बिलउमूम ऐसे कबाइल और अनासिर से हो जो साबिक ताल्लुकात न रखने की वजह से बिल्कुल अजनबी हों, इस काम के लिए बड़ी सियासी महारत की ज़रूरत होती है। मुखातिब के हालात और रुझानात को देखना, कुव्वत को पहचानना, इस तवाज़न कुव्वत को समझना जो किसी ख़ास लम्हे मुख्तलिफ अज्जाए माशरा के दरमियान कारफरमा हो, मुखालिफ ताकतों के असरात का मुतालिया करना, शरायत की वो ख़ास दरमियानी लकीर तलाश करना जहाँ तक किसी कबीले या अनसर को लाया जा सकता हो, और फिर नफ्सियाती लिहाज से गुफ्तो शनीद में असर पैदा करना। ऐसे बेशुमार लवाजिम पूरे करने पड़ते हैं। वाक़िया ये है कि मोहसिन इंसानियत ने इस दायरे कार में जिस दर्जे की सियासी बसीरत और कायदाना महारत और डिप्लोमेटिक काबिलियत का नमूना पेश किया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। और इस वजह से नहीं मिल सकती कि नबी सल्लम ने इतने वसी ताल्लुकात मुख्तलिफ हालात में पैदा करते हुए किसी भी मौके पर नज़रिए हक अपने अखलाकी असूलों और अपने सियासी मर्तबे को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचने दिया। वरना डिप्लोमेटिक दायरे में जिस बुरी तरह से असूल अखलाक का कत्ले आम होता है, इसकी वजह से लफ्ज़ डिप्लोमेसी बदनाम होकर रह गया। खुद सियासत आज एक मकरूह मशगला इसीलिए बनकर रह गई है। सियासत का कोई अखलाक नहीं होता और एक ऐसा टैंक है कि जिधर को हरकत करता है इंसानियत की कीमती कदरों को रौनता चला जाता है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिप्लोमेसी और सियासत का बिल्कुल मफहूम बदल के रख दिया और इन कामों को ना सिर्फ आलाइशों से पाक कर दिया बल्कि नेकी और इबादत की रूह से सजा दिया। इस्लामी असूलों के साथ सियासी और डिप्लोमेटिक सरगर्मियों को जारी रखना और फिर इनमें गैर मामूली दर्जे की कामयाबी हासिल करना और इसके ज़रिए बेशुमार बिखरे हुए कबाइल को अपने गिर्द जमा कर लेना आज किताबों के औराक में पढ़ते हुए आसान मालूम होता है, मगर रेगिस्तान अरब में जब अमलन ये सब काम हो रहा होगा तो करने वाला ही जान सकता है कि कितनी कठिन मुहिम होगी। देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनमें डॉक्यूमेंटेशन आसान होती है। जो लोग ज़रा सीधे सादे और देहाती मिजाज के हों उनके अंदर ये काम कर जाना बड़ी बात है। ये मुराद है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को ऐसे दस्तूर और ऐसी पॉलिसीज़ का आदी कर दिया जिन्होंने कभी ये कुछ सोचा भी नहीं था, जिनके ज़िंदगी में ये चीज़ें पहले से नहीं थी। फिर इसी तरह माहदाना रवाबित का ये सिलसिला ना सिर्फ इस लिहाज से दावत की तौसी में मददगार था कि हलीफ कबाइल में मुस्लिम दाइयों को आमदोरफ्त और अवाम से घुलने मिलने के खुले मौके हासिल हो जाते थे और ख़ुद इन कबाइल के अफराद का रबता भी मदीना से बढ़ जाता था, बल्कि इस लिहाज से भी इस तहरीक के असरात की तौसी का मूजिब था कि इसकी वजह से मुस्लिम ताकत अपनी सियासी बसीरत की वजह से अवाम की मोतमिद अलैह बनती जा रही थी। मोतमिद अलैह किसको कहते हैं? जिस पर एतमाद किया जा सके। मतलब क्या है कि अपना एतमाद बहाल रखना। किसी काम को भी याद रखिए, सही तरीके से अगर आप करते हैं या उस काम की कामयाबी किस चीज़ में रखी हुई है कि आप एतमाद कितने लोगों का हासिल करते हैं। कि आप के ऊपर एतमाद नहीं होगा दूसरों को, आपका काम कभी भी दूसरों के लिए काबिले कबूल नहीं होगा। लोग महदूद मजहबी और सूफियाना तसव्वुरात के बनाए हुए नेक आदमियों पर कितने ही फरेफ्ता हों, शख्सियत परस्ती, कुर्बान जा रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, पाँव चूम रहे हैं, सजदे कर रहे हैं क्योंकि जी फलां बड़ा नेक है, और इसके तकद्दुस से मरूब रहें, लेकिन वो ज़िंदगी की क़्यादत की बाग दौड़ इन्हें कभी नहीं सौंपा करते। ज़िंदगी की क़्यादत दुनिया में हमेशा इन अनासिर को दी जाती है जिनके बारे में अंदाज़ा हो कि ये काम करने के लिए ज़रूरी बसीरत भी रखते हैं। किसी बुजुर्ग के हाथ पांव लोग चूम लेंगे, सजदा भी कर लेंगे, उसको अपना मुश्किल कुशा समझेंगे, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे आप जहाज़ चलाएंगे तो हम बैठेंगे। उनको पता है ये जहाज़ चलाना नहीं जानते, ये खुद भी डूबेंगे हमें भी डुबो देंगे। जब ज़िंदगी में कामयाबी की ज़रूरत पड़ती है तो लोग उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनके पास हुनर है। आप देखिए, कितना भी किसी मजहबी शख्स के पास जाएं, लेकिन जब बीमार होंगे तो डॉक्टर पे जाएंगे ना। अब वो डॉक्टर नमाज भी पढ़ता है नहीं, वो मुस्लिम भी है नहीं, ये आपको पता है कि जो आप उसके पास अपनी बीमारी की वजह लेके जा रहे हैं वो आपको उसमें गाइड कर सकता है। तो काम के बने, असल मतलब यह है कि बैठकर लोगों से हाथ पांव ना दबवाएं, लोगों के दिलों में अपनी अकीदत भरने की बजाय लोगों के खैर का बने, उनको फ़ायदा दें, फिर लोग आप पे एतमाद करेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग किसी गिरोह के बारे में बड़ी तारीफ़ों से काम लेकर कहा करते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक काम करते हैं, बड़ी खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं, और इस तारीफ़ में ये तासर भी छुपा होता है कि दुनिया के काम के लिए ये सख्त नामौजू भी हैं। ऐसे गिरोह लोगों की ये बातें सुनकर बारहा मुगालतों में भी पड़ जाते हैं कि राय आम हमारे हक़ में अच्छी है। बात समझ गए कि यानी लोगों की तारीफ़ों से बाद दफ़ा बंदा अपने बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाता है। मुस्लिम ताकत अगर ऐसा इंसानी किरदार बना के सामने लाई होती, यानी अगर नबी सल्लम ने भी लोगों से सिर्फ अपनी तारीफ़ें ही कराई होती, जो मजहबी रंग में नेकी का पैकर और रूहानी लिहाज से तकवा का मुजस्मा तो होता, लेकिन मामलाते दुनिया और मसाइले तमद्दनों सियासत में कोई अहलियत नहीं दिखा सकता, तो तासुर यह होता कि कुछ भले लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, अच्छी बातें कहते हैं, लोगों से नेक सलूक करते हैं, लेकिन ऐसा कतन मुमकिन ना था कि अवामुन्नास इनसे किसी नए निज़ाम की इकामत की उम्मीदें बांध सकते, इनको सल्तनत चलाने और माशरे की यानी समाज की क्यादत करने का अहल मान सकते। इस्लामी तहरीक ऐसे अल्लाह लोग बनाने नहीं आई थी, इसको हाईलाइट करें, जो बाहसियत फ़र्द बहुत ही अल्लाह वाले भले मानस और मिस्कीन तस्लीम किए जाएं, लेकिन इज्तमाई दायरे में कार फरमा और कार बर्दाश्त यानी काम करने वाले बनने के लिए सियासी बसीरत का ज़रूरी सरमाया ना रखते हों। लोग इनको एक मुतबादिल मगर साले तर क़्यादत की हैसियत से कबूल ना करें और इनके हाथों किसी रोशन मुस्तकबिल की तामीर की तवक्को ना रखें। मुस्लिम किरदार जितना ज़्यादा खुदा परस्त और मुत्तकी था, उतना ही ज़्यादा सियासी बसीरत से भी आरास्ता था। इस मामले में इसने अपना सिक्का अपनी अमली कारगुजारी से मनवा लिया। जूं जूं लोग मौसन इंसानियत और आपके साथ या आपके जिलों में इकदाम करने वाली मुस्लिम ताकत की कायदाना सलाहियतों से मुतासिर होते गए, मदीना इनकी उम्मीदों का मरकज़ बनता गया, और इसका नतीजा यही हो सकता था कि इनके दिल भी इसी तदरीज यानी ग्रेजुअलिटी से इस्लाम के लिए खुलते चले गए। गोया दीन की दावत और सियासी असरात की वसत दोनों काम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम थे और एक दूसरे के लिए मुमित यानी मददगार। ये हकीकत जहन में रखकर इन माहदाना ताल्लुकात का जायजा लीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वसी पैमाने पर कायम करके दिखाए, और इस काम में आपकी रफ्तार कार हैरत अंगेज हद तक तेज़ रही, बावजूद ये कि रसल और रसाइल के लिहाज से हालात सख्त नामुवाफिक थे। जो खुलासा है ना पूरी बात का, इस्लाम सिर्फ अल्लाह लोग लोग नहीं पसंद करता, ये बड़े अल्लाह लोग हैं, हंस के दिखा देते हैं, चुप कर जाते हैं, रो जाते हैं, स्किल्ड लोग। देखिए अल्लाह के नबी की वो हदीस याद कर लें कि मोमिन दोनों ही होते हैं, लेकिन एक मजबूत उमर की तरह एक आजीज होता है, और अल्लाह को मजबूत मोमिन कमज़ोर मोमिन की निस्बत प्यारा लगता है। यानी अपने अंदर स्किल्स लाएं, हर खूबी आनी चाहिए आप, हर चीज़ हो, बात का सलीका हो, बैठने का सलीका, चलने का सलीका, आप कोई आपसे बात करने में बस कुरान की आयत सुन लीजिए, बस हमें बात करनी नहीं आती, ये गलत तरीका है। यानी नबी से सल्लम और अस्हाब रसूल की सूरत में लोगों को वो गिरोह नज़र आया जो हालात बदल सकता था। ये कैसरो किसरा के ताज जो टूटे, जो ईरान और फारस तक इस्लाम की हदें पहुँची, ये क्यों पहुँची? इसलिए पहुँची कि मुसलमानों में खूबियाँ थीं। अगर बैठकर गद्दी नशीनी और पीरी मुरीदी का ताल्लुक होता और सामने रख के बड़ी सी तस्बीह 500 दानों की बैठ जाते और लोगों के जिन भूत निकालते रहते, तो ये इतनी बड़ी सल्तनतें कैसे मुस्लिम होती और होने के बाद करते क्या? देखिए किसी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग कहते हैं कि मतलब कुछ लोग ज़रा ज़्यादा एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, अल्लाह फ़लाँ मुल्क को मुसलमान कर दे मसलन, या फ़लाँ जो है वो सारे काफ़र मर जाए, फ़लाँ मुल्क डूब ही जाइए, चले सारे काफ़र मर गए तो आप निज़ाम संभाल लेंगे, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप है वो आप चला लेंगे, बॉस्टन यूनिवर्सिटी और इधर उधर, क्या आज हम मुसलमान इतने स्किल्ड हैं कि सारे काफिर बिलफर्ज हमारे गुमान के मुताबिक मर जाएं, अजाब आए, जलजला आए और तबाह हो जाएं और मुर्दाबाद हो गए? आप सोच लीजिए सारे ही मर गए, हो सकता है? अल्लाह तो क्या नहीं कर सकता, अल्लाह करता नहीं ऐसा, ना हम कहते हैं कैसा अल्लाह करे, हम ये क्यों नहीं कहते कि सारे मुसलमान हो जाएं? मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन ये स्किल्ड लोगों ने मुसलमान होना है और फिर इस्लाम को इज़्ज़त मिलनी है। हम जैसों ने जो टेढ़ा मेढ़ा और ढीला ढाला इस्लाम लोगों को दिखाना था दिखा दिया, जैसे हम वैसे हमारा इस्लाम। ये रास्ता बनाते हैं तो आप देखिए उसके से पहले प्लानिंग करते हैं, तो क्या पता चला, अपने अंदर खूबियां पैदा करे बंदा। देखिए जिंदगी में अगर आप और मैं आज भी फ्रॉम टूडे 23 जनवरी 2019 आज से अगर अपने आप को बदलने का, अपने अंदर नई खूबियां लाने का आजम करें, कोई चीज़ हमारे रास्ते की रुकावट नहीं। ये अल्लाह की सुन्नत है। आप ना चाहें सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दें, अल्लाह ताला आपको ऐसे नहीं डिस्टर्ब कराएगा, लेकिन अगर आपने करना है तो फिर अल्लाह आपसे ज़रूर कराएगा। अपने आप को चेक करें, क्या नहीं है मेरे अंदर पैदा कर लें, क्या वीक पॉइंट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लें। कई चीज़ों में कमी होती है, देखे जिसमें में कितनी चीज़ों की कमी तो नहीं होती है, एक आधी किसी में कैल्शियम की कमी, आप गोली खाते हैं कैल्शियम ठीक हो जाता है, आप सेब खा लीजिए कैल्शियम ठीक हो जाएगा, दूध पी लीजिए कैल्शियम की कमी दूर होगी ना, आपकी विटामिन डी भी कि आप उसको मेकअप करें। तो क्या मैं अपनी ज़ात जिस पे मैं पैदा होकर आज तक पहुंची हूँ, अब इससे बेहतर मैं हो ही नहीं सकती? ये तो बड़ी हार मानने वाली बात है। बड़ी से बड़ी खूबसूरत अच्छी से अच्छी चीज़ के अंदर भी गुंजाइश मौजूद होती है बेहतरी की। असल बात यह कि हमारे अंदर खूबियाँ हैं, हम उनको सही जगह इस्तेमाल नहीं करते। और जो मुझे चीज़ समझ आई है, वी आर नॉट फोकस्ड, सीधे नहीं है, हम इधर उधर ताका झांकी बहुत करते हैं। हमें आज भी इसका यकीन नहीं आया कि हमारी असल फलाह किस में है। और हम दीन का मजाक खुद करवाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के अपने अंदर एक एनर्जी मैं इस फील करती हूँ और मेरे अंदर गर्मी आ जाती है। किधर है मेरा नबी ऐसा जिसको तुम एक चोगा पहना कर, लंबी सी माला पहना कर, हाथ में एक कासा पकड़ा देते हो? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ जहन में आता है ना, वो जीनियस, एटिकेटेड, मैनर्ड, स्माइली, कामयाब, सूटेड बूटेड, ऐसा बंदा जिसको देखकर खुद ही सर झुकने लगे। मुझे तो ऐसे आते हैं, मुझे तो कोई उनमें बेकारगी और बेचारगी और महरूमी और हाय चलो सब्र करो 4 दिन की दुनिया आगे जाके ठीक कर ले, ये तो नहीं दिखते। और ये स्ट्रेटेजी गैर पढ़ते हैं, आपको पता है आज गैरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से सीख लिया और हम मुसलमान बैठ कर उनका चोगा सब्ज रंग का और काली पगड़ी पहन कर बैठ गए। बिलीव मी, हमने अल्लाह के नबी का छिलका लिया, उन्होंने गुदा लिया। जो भी कामयाब है, सारे वो भी नहीं है, लेकिन जिसने भी लिया वो तर, तो अपने लिए अपने नबी को एक रोल मॉडल समझें। इंशाल्लाह उनसे बड़ा मोटिवेटर और उनसे अच्छा उस्ताद और उनसे अच्छा ट्रेनर दुनिया में कोई नहीं गुजरा। क्या रिसोर्सेज थे, क्या उनके पास कुछ 4 लफ्ज़ बोलने वाली मशीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन आप कैसे अरब के बदबुओं को कैसे तैयार करके चले गए, उनका अंदर का टैलेंट खोल कर दिखा दिया। ठीक है जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।